وافر غدیر میں تاریخ اعتبار سے کچھ حصہ وہ ہے جس کو سارے مخالفین مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. وہ کون سا حصہ ہے؟ وہ کہتے ہیں مولانا امیر المومنین کو ولایت دو، اس معنی میں کہ یہ سب سے زیادہ متقی پرہیزگار صحابی رسول ہے. کہتے ہیں ہم مانتے ہیں، اس پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہوگا. ابھی تک جو سامنے آتی ہے بات، کم از کم نامی گرامی جتنے لوگ ہیں ان میں سے کسی کا اختلاف نہیں ہوگا اس پر. اور میں نے کئی دفعہ تجربہ کیا ہے اس بات کے اوپر، اس میں اختلاف نہیں ہے. ہمارے سامنے بیٹھ کے ثابت کرتے رہتے ہیں کہ ہاں وہ متقی ترین تھے، عالم تھے، سب ثابت کر دیتے ہیں. اچھا، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. بعض نے کہا کہ نہیں، ہم اس سے بڑھ کر بھی جانے کو تیار ہیں. وہ کیا جانے کو تیار ہیں؟ کہا کہ دین اور سیاست دو علیحدہ برانچز ہیں، دین کی امامت امیر المومنین کے پاس، یہ بھی ماننے کو تیار ہے. بس ایک گروہ وہ ہے جس نے کہا مولانا امیر المومنین کے تقویٰ، شجاعت، خشیت خدا، علم، ان سب کو ماننے کو تیار ہے، باقی کے کوئی تذکرہ نہ کرے. ایک گروہ نے یہ کہا ہم یہ سب بھی مانتے ہیں اور امیر المومنین کے امام ہونے کو بھی مانتے ہیں. کس فیلڈ میں؟ انہوں نے کہا دو کیٹیگریز کر لیجیے، ایک دین ہے اس میں ہم مانتے ہیں، اور ایک سیاست اس میں ہم نہیں مانتے. اچھا، ہم جب کہیں گے بھائی آپ دین بڑی چیز ہے، سیاست بڑی چیز ہے، آپ دین میں مان رہے ہیں سیاست پہ نہیں مان رہے، تو وہ کھسیانی ہنسی ہنس کر کہتے ہیں سیاست اتنی پست چیز ہے، اس میں آپ مولانا امیر المومنین کو نہیں لائے. تو بڑی چیز میں مان رہے ہو جو دین ہے، تو چھوٹی چیز میں حاکمیت کو نہیں مانتے. ان کو پتا ہے یہ دین وہ جگہ ہے جہاں پہ ہم دخالت دیں گے بھی تو ذلیل ہو جائیں گے، وہاں معجزہ لانا پڑتا ہے، اور سیاست وہ جگہ ہے جہاں پر ہم دخالت دیں گے ہمیں معجزے کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی، صرف شمشیر کسی کی گردن پہ رکھواؤ، بیعت کروا دو، معاملہ ختم ہو گیا. تو انہوں نے ان دو کیٹیگریز میں تقسیم کر دیا. قدیم زمانے میں بھی ایسے علماء تھے، اس وقت کے دور میں بھی ایسے علماء ہیں جنہوں نے کہا بھائی دو حصے کر لو، امیر المومنین کی امامت کو، ان کی حاکمیت کو دین میں قبول کرتے ہیں، حتیٰ نبی کی جانشینی بلا فصل کو بھی قبول کرتے ہیں. کس چیپٹر میں؟ دین میں. سیاست میں کا نہیں، اس میں نہیں، اس کیٹیگری کو آپ علیحدہ کر دیجئے. اچھا، ہم ان سے صرف سوال کرتے ہیں بس اس میں کس کی حاکمیت قبول کرتے ہو؟ تو کہتے ہیں اس میں جس کو لوگ مان لیں وہی صحیح ہے. اچھا، جس کو لوگ مان لیں صحیح ہے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد کہتے ہیں ہم اسی طریقے سے چلائیے، وہ دین کے حاکم رہے، یہ دنیا کے حاکم رہے، آپ ان دونوں کو ایک دوسرے سے نزدیک نہ لائیے. چند دن پہلے کسی نے مجھ سے فون کیا، ان سے بات کی مجلس کے بعد، وہ مجلس تھی میرے خیال میں جہاں تک میرے ذہن میں آتا ہے، شاہ خراسان میں، بہت نامور آدمی ہے، آپ لوگ شاید جانتے ہیں، اکثر جانتے ہیں. تو وہ تشریف لایا، انہوں نے کہا کہ بھائی اگر کوئی مجھ سے آ کر یہ کہے، مجھے معلوم ہے ان کے خاندان میں مشترکہ اس طرح کی شادیاں ہوئی ہوئی ہیں کہ اہل سنت نے شیعہ سے، شیعہ نے اہل سنت سے شادیاں کی ہوئی ہیں، کہنے کہ اگر کوئی آ کر ہم سے یہ کہے کہ ہم اہل بیت کی دینی حاکمیت کو مانگتے ہیں، دنیاوی حاکمیت کو نہیں مانتے، اس کا جواب کیا ہے؟ میں نے صرف ایک بات پوچھنی پڑے گی، اگر دین میں امیر المومنین کی حاکمیت کو مانتے ہیں، امیر المومنین اور ان کی اولاد کی حاکمیت کو مانتے ہیں، انہوں نے کہا دین میں مانتے ہیں سیادت پہ نہیں مانتے، میں نے اس سے کہا صرف ایک بات دیکھنا، وہ نماز کیسے پڑھ رہا ہے. تو اس سے پوچھنا ہے جس طرح نماز پڑھ رہے ہو یہ امیر المومنین نے کہا تھا یا کسی اور نے کہا تھا؟ فقہ میں کس پہ عمل کر رہے ہو؟ اس فقہ پہ عمل کر رہے ہو جو امیر المومنین اور اولاد امیر المومنین نے کہی تھی، یا اس فقہ پہ عمل کر رہے ہو جو ان کے مخالفین نے کہی تھی؟ کم سے کم جو بات دعوے میں کہہ رہے ہو اسی پر عمل کر کے دکھا دو. فرض کرو تم کہہ رہے ہو تم سیاست میں امیر المومنین کی نہیں مانتے، دین میں امیر المومنین کی مانتے ہو، تو میں تم سے پوچھوں گا جو دین تمہارے ہاتھ میں ہے یہ علی کا دیا ہوا دین ہے یا امیر المومنین کا دیا ہوا دین ہے؟ کیا آیا اولاد امیر المومنین نے یہ دین تم کو دیا تھا؟ ایک دفعہ اپنے آپ سے پوچھو. اگر تم کہتے ہو تم نے دین امیر المومنین اور اولاد امیر المومنین سے لیا، تو تمہارے راویوں کے پاس دشمنان امیر المومنین کے نام کیوں ہیں؟ پھر ان میں امیر المومنین سے بوجھ رکھنے والوں کے نام کیوں ہیں؟ پھر اس کا مطلب ہے کہ جو کہہ رہے ہیں ہم امیر المومنین اور اولاد امیر المومنین کو دین میں حاکم مانتے ہیں، یہ بھی دین میں بھی حاکم نہیں مان رہے ہیں. یہ صرف کہنے کی بات کر رہا ہے، یہ صرف معاملے کو ٹالنے کے لیے کہہ رہا ہے. آپ تصور کیجئے، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کچھ مخالفین نے کہا ہم دوستی کی حد میں مانتے ہیں، جانشینی کی حد میں، دین کی حد میں مانتے ہیں، سیاست کی حد میں نہیں مانتے. اب میں کہوں گا ہم لوگ کون لوگ؟ तारीख के एतबार से हम लोग वो लोग हैं जिन्होंने कहा अल्लाह के रसूल ने जहाँ खड़ा दिया है हम वहीं खड़े हैं। आज सुबह किसी से बात हो रही थी, इतफाकन बात गदीर पर चल निकली, तो कहने की कि मेरे पास कोई साहब है, उन्होंने कहा भाई आप लोग इत्तेहाद कर लें, अहले सुन्नत अहले शिया इत्तेहाद कर लें। उन्होंने कहा बिस्मिल्लाह, हम तो 1400 साल से कह रहे हैं कि इत्तेहाद कर लो। तो उन्होंने कहा भाई इत्तेहाद की आप बताएं आप इत्तेहाद करेंगे तो कैसे इत्तेहाद करेंगे। जो हमारे दोस्त थे उनसे कहा आप इत्तेहाद करें, उन्होंने कहा हम इत्तेहाद के लिए तैयार हैं, हम 1400 साल से कह रहे हैं इत्तेहाद करो। तो उन्होंने कहा आप बताइए आप इत्तेहाद कैसे होगा। कहने के इत्तेहाद ऐसे होगा कि 10 हिजरा गदीर के दिन अल्लाह के रसूल ने हमें एक मैदान में खड़ा किया था, आप छोड़कर भाग गए, हम मैदान में अभी भी खड़े, आप मैदान में आ जाइए। अल्लाह के रसूल ने हमसे कहा मन कुन तो मौला बहादा अली उन मौला, हमने सुना हम वहीं पर खड़े हैं कि हम अली को मौला मानते हैं, आप कहीं और चले गए और आप किसी और को मान के बैठ गए, हम आपको दावत देते हैं इत्तेहाद करें वापस आकर अमीरुल मोमिनीन को मौला तस्लीम करते हैं। दुरूद भेजो मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये हमने अमीरुल मोमिनीन को मौला माना, उस मौला के तमाम फैकल्टीज को तस्लीम कर लिया, दीन सियासत हुकूमत हाकमियत सब ने अमीरुल मोमिनीन को और औलाद अमीरुल मोमिनीन को मौला तस्लीम कर लिया। सही है। अच्छा, ये तारीख में हमारा मौकफ है। अब जितनी जगह पे जश्न गदीर आज सब मनाया जा रहा होगा, उन सब से पूछेगा ये तुम्हारा मौकफ है, वो कहेंगे हाँ यही है कि तमाम जिंदगी के पहलुओं में अमीरुल मोमिनीन और औलाद अमीरुल मोमिनीन हाकिम है। सही है। फिर मैं पूछूंगा ये जो आज आप फला पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को अपना लीडर कहते हैं, ये क्या दो जवाब क्या कहेगा? वो कहेगा कि मैं दीन के मामले में अमीरुल मोमिनीन को मानता हूं, मैंने तो इसको सियासत में माना हुआ है। तो मैं कहूंगा यही बात तो दुश्मन भी कह रहे थे, यही तो दुश्मन भी कह रहे थे भाई 1400 साल पहले उन दुश्मनों के सामने एक मुश्किल आई, हदीस गदीर, उसका इलाज उन्होंने क्या निकाला? उन्होंने कहा भाई दीन अमीरुल मोमिनीन के पास, सियासत किसी और के पास। आप भी जवाब में यही कह रहे हैं। अच्छा, अब वो हमसे पूछेगा कि ठीक है भाई अगर मैं आपकी बात मान लूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक सादा सा काम करना पड़ेगा, आप जिसको दीन में हाकिम माने उसी को सियासत में हाकिम मानना पड़ेगा, ये हमको करना पड़ेगा। अच्छा, अगर आपने ये नहीं किया तो आप अमलन मौकफ में उसी जगह पर जाकर खड़े हो जाएंगे जहाँ दुश्मन खड़े हुए थे। और मैं अब आपकी खिदमत में यूँ अर्ज़ कर सकता हूँ कि आज की शब जश्न गदीर मनाने वाले शायद 90% लोग वहीं खड़े हो गए। इसको मैं एक और तरह से अर्ज़ करता हूँ आपकी खिदमत में, दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज़ान मतलब हमसे गलती हो रही है, हम तारीख में हक गदीर को पूरी उमूमियत के साथ मानते हैं, जब हाल में आते हैं तो उस हक गदीर को उतना ही सुकिर्ड देते हैं जितना तारीख में दुश्मनों ने सुकिर्ड दिया था, उतना ही महदूद कर देते हैं जितना दुश्मनों ने तारीख में महदूद किया था। अच्छा, अब एक अजीब बात है वो क्या, मुस्तकबिल में आप क्या मानते हैं? तारीख में मानते हैं हक गदीर उमूमियत रखता है जिंदगी के तमाम पहलुओं पर, मुस्तकबिल के लिए क्या मानते हैं? मुस्तकबिल के लिए आपका मंसूबा क्या है? मुस्तकबिल के लिए मंसूबा ये है कि औलाद अमीरुल मोमिनीन तशरीफ लाएंगे, उस वक्त किस हाकिमियत को उनको देंगे आप? जिंदगी की तमाम हाकिमियतें उनको दे देंगे। बस माजी में भी मानते हैं कि औलाद अमीरुल मोमिनीन और अमीरुल मोमिनीन को सारी हाकिमियतें मिलनी है, मुस्तकबिल में भी मानते हैं और जब हाल में पहुंचते हैं तो फिर वहीं खड़े हो जाते हैं जहाँ पहले के दुश्मन और बाद के दुश्मन खड़े हुए हैं। और वो क्या है? और वो ये है कि हाकिमियत तकसीम कर लेते हैं, दीन अमीरुल मोमिनीन के नाम, दुनिया किसी और के नाम। ये तो अमलन फिर गलत हो गए। इस गलती की वजह से हक गदीर 1400 साल का अभी तक नाकाबले इत्माम यानी ख़त्म ना हुआ वह इनकम्प्लीट एजेंडा है अभी तक। क्यों हक गदीर अदा नहीं हुआ? 1400 साल पहले भी अदा नहीं हुआ, साहिबान हक ने कुर्बानियां दी। आज 1400 साल के बाद मैं नजर दौड़ाता हूं तो फिर एक बात समझ में आती है, हक गदीर अदा नहीं हुआ, साहिब हक अब भी कुर्बानी दे रहे हैं। अच्छा, वो क्यों कुर्बानी दे रहे हैं? आप कहते हो उनको 1400 साल पहले इसलिए कुर्बानी देनी पड़ी कि हम ही सामने नहीं आए। आज क्या हो रहा है? आज भी यही हो रहा है। आवान और अंसार और हिमायत और नुसरत करने वाले मैदान में नहीं आए। उन्होंने क्या किया? उन्होंने हक किसी और के हवाले कर दिया, और इस हक को दस्तबरदार करने के बावजूद माजी में फिर हक का जश्न मना लिया। ये क्या किया? यानी फी जमाना, अपने जमाने के अंदर हक से दस्तबरदार हो गए, नाउज़ बिल्ला, ये हक किसी और को तजवीज कर दिया, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को दे दिया, और माजी के उस हक को फिर जश्न मना लिया कि माजी में इतना बड़ा हक ऐलान हुआ था। तो तुमने जो इतने बड़े जश्न की बात कर रहे हो कि ऐलान हुआ था, हाल में क्यों हक से दस्तबरदार हो रहे हो? फिर उन लोगों की मजम्मत क्यों कर रहे हैं जो हम दिन जिन्होंने उस वक्त हक अदा नहीं किया था? तो आज फिर कर रहे हैं आप लोग यही काम। तो ऐसा मोहतरम, मुझे एक बात समझ में आई है। अगर गदीर को देखूं तारीख में तो जश्न है, अगर गदीर को देखूं हाल में तो मातम है। तो फिर मातम है, क्यों मातम है? उसकी वजह यह कि 1400 साल हो गए हक ऐलान हुए, आज तक अदा नहीं हुआ। इनकम्प्लीट एजेंडा है, अभी तक अदा नहीं हुआ। ये अच्छा है कि वादा है कि मुस्तकबिल में अदा हो जाएगा, ये वादा हुआ है मुस्तकबिल में अदा हो जाएगा, सिर्फ एक सवाल के साथ। पता नहीं हम उन लोगों में से होंगे जो हक अदा कर देंगे, या उन लोगों में से होंगे जो नाउज़ु बिल्लाह पीछे रह जाए, यानी अभी नहीं मालूम ना। ये अहम तरीन मसला है गदीर के हवाले से, और ये वो चौथा पॉइंट है जिसके ऊपर आपने अपनी ज़िंदगी में शाज़ो नादिर कभी सुना होगा। हम लोग तारीख का जिक्र करें लेकिन खुदा जानता है कि हम पर सवाल होगा कि तुमने अपने ज़माने में हक के गदीर की अदायगी के लिए क्या किया। और मैंने इसी दौरान में इजमालन अर्ज़ कर दिया कि हमें क्या करना होगा। एक बार फिर उसको अर्ज़ कर देता हूँ, की खिदमत में दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। जिस तरह माजी में ज़रूरत थी, जिनके सामने हक़ गदीर ऐलान हुआ था उनके ऊपर एक चीज़ वाजिब हो गई थी। क्या वाजिब हुआ था? अपनी पूरी ज़िंदगी के साथ तस्लीम हो जाए अमीरुल मोमिनीन के हक़ के सामने, तस्लीम हो जाए, क्योंकि अल्लाह के नबी ने कहा था कि मैं औला हूँ तुम्हारे नफ्स के ऊपर तुम सबसे भी, मेरे पास विलायत है। और सब ने कबूल किया था कि हाँ ये विलायत है। अगर उस विलायत को तस्लीम करते हैं तो ज़िंदगी के तमाम पहलुओं के साथ, फैकल्टीज के साथ अमीरुल मोमिनीन और उनके औलाद के सामने तस्लीम हो जाए। इसका मतलब ये है कि हमें और आपको अपनी ज़िंदगी में वही करना होगा जो अमीरुल मोमिनीन और औलाद अमीरुल मोमिनीन ने हमसे चाहा है कि हम अंजाम दें, और इसमें कोई तफरीक नहीं रहेगी, चाहे वो सियासत हो, चाहे वो सकाफत हो, चाहे वो माशरत हो, चाहे वो सियासत हो, हमारी सारी ज़िंदगी उनके नाम के ऊपर जाएगी। अच्छा, ये वो हक है जिसकी अदायगी साख्त है। आप खुद तस्वीर कीजिए, और मैं खुद अपने जहन से बार बार सवाल करता हूँ, इतना हम वाकई करबला को दोहराते हैं और उस दौराने के दौरान हम लोगों के जज्बात को देखते हैं, अपने जज्बात को भी देखते हैं, और मैं सोचता हूँ कि उनका मकाम कितना बुलंद है जिन्होंने करबला में कुर्बानी दी। अपने आप से एक सवाल कीजिएगा, अगर हक के करबला और हक के गदीर बस इतना है कि साल में चंद दिन याद करना और मामला ख़त्म है, तो ये कौन सी कुर्बानी है? इसमें कौन सी कुर्बानी है? तो कोई भी कुर्बानी नहीं हुई। बिल्कुल उस कुर्बानी के मुकाबले में जो वो लोग 1400 साल से देते आ रहे हैं। तो अब हमें ये सोचना पड़ेगा कि इज़ान मोहतरम, जब हम अपनी पूरी ज़िंदगी के साथ अहले बैत के सामने सरेंडर होंगे, तब हम गदीर के मामले में कह पाएंगे कि हाँ हम हक़ गदीर की अदायगी के रास्ते में। बस ये जश्न मनाना चाहिए नहीं मनाना चाहिए? ज़रूर मनाना चाहिए, कतअन मनाना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि तारीख में इसे ही भूल जाए हम लोग कि जश्न था, एक गदीर थी। लेकिन इस जश्न के साथ साथ जिम्मेदारी का एक एहसास भी होना चाहिए कि हम उस जश्न के तारीख में वारिस हैं और इस हाल में उस हक के निगहबान हैं जो गदीर के दिन हमारे सामने ऐलान हुआ था। हमारे साथ एक मुश्किल है, गदीर के मौके पर जहाँ कहीं तकरीर करने जाते हैं वहाँ शुरू जश्न से होता है, इख्तिताम लोगों को एक फिक्र में डालने पर होता है, और उस फिक्र में डालने के बाद उनके चेहरों से जश्न की खूबसूरती ख़त्म हो जाती है।